दसद्दसय चावदीहिरं पडमजिनं वोक्षम्णमिवूणन्तरं अनंतरुत्तुंगसन्नमय दुःखेच्छं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें महावीर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब इसमें हम अपनी, ये तो पंचम पुस्तक चल रही है जीव उठान की, और उसमें अंतरानुगम की बात चल रही है, अंतर की बात हम देख रहे हैं। पहले गुणस्थानों में अंतर देखा, देखो काल उसको कहते हैं कि उस गुणस्थान में रहने का काल, और अंतर उसको कहते हैं कि वो गुणस्थान छोड़कर अन्य गुणस्थान में चला गया और वापस उस गुणस्थान में आने के लिए जल्दी से जल्दी कब आ सकता है, तो उसको कहते हैं जघन्य अंतर। और अधिक से अधिक कितने काल तक वो गुणस्थान छोड़कर वापस फिर आ सकता है, उसको कहते हैं उत्कृष्ट अंतर। उसमें भी नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा, ऐसी बातें करेंगे। तभी हम यहाँ देख रहे हैं, पहले मैं सभी गुणस्थानों की बात कर दी, अभी मार्गणाओं में हमने नरक गति की और तिर्यंच गति की बात देखी है, उसमें से तिर्यंच की बात चल रही है अभी अपनी। हाँ, तो सासाधन के लिए हमने बात देखी थी, उसमें ऐसा भी देखा था कि सासाधन गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा अगर कम से कम जघन्य अंतर है तो एक समय है, यानी उस गुणस्थान में कोई भी जीव नहीं है ऐसा हो सकता है, तो कम से कम कितने टाइम के लिए अंतर हो सकता है, तो एक समय। और अधिक से अधिक ऐसा कितना काल होगा कि सासाधन में कोई भी जीव नहीं है किसी भी गति का? हाँ नहीं, उपल्य का संख्या तो पल्य का संख्या तो, और अभी एक जीव की अपेक्षा कहेंगे, एक जीव की अपेक्षा जघन्य में जघन्य काल कितना लगेगा? कोई सासाधन में आया, सासाधन छुटकर मिथ्यात्व में गया, वापस सासाधन आएगा, कब आएगा? तो वापस जब उपशम सम्यक्त करेगा तब। तो उसके लिए एक बार उपशम सम्यक्त से सासाधन माने के बाद फिर दोबारा उपशम के लिए कितना काल लगता है? तो उसको कहते पल्य का असंख्यात भाग काल लगता है। उसके पहले सम्यक्त तो हो सकता है, परंतु वो वेदक सम्यक्त तो हो सकता है। उपशम के बाद दोबारा उपशम होने के बीच में पल्य का असंख्यात भाग प्रमाण इतना काल जाता है, इसलिए एक जीव की अपेक्षा सासाधन गुणस्थान का जघन्य अंतर पल्य का असंख्यात भाग है। अब एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कितना होगा सासाधन का? तो कहते कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि, सबसे पहले प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त किया, फिर सासाधन में आया, सासाधन से मिथ्यात्व में गया, उसका अंतर चालू हो गया। अब वो मिथ्यात्व में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक परिभ्रमण किया, और जब उसका भी मोक्ष जाने का काल नजदीक आ गया, तब जाके फिर उसने प्रथम ऑप्शन समय को प्राप्त किया और उसमें से गिरकर सासाधन में आया। ये तो जनरल बात की हमने। अब यहाँ तिर्यंचों में बात चल रही है, कोई तिर्यंच जीव अनादि मिथ्या दृष्टि था, प्रथम ऑप्शन समय को प्राप्त किया और फिर गिरकर सासाधन में आया और आगे नीचे चला गया, अब उसका अंतर चालू हो गया, तो उसके अधिक से अधिक कितने काल तक उसका अंतर होगा? तो अर्धपुद्गल परावर्तन उसने भ्रमण किया, परंतु अंतिम भव तो तिर्यंच का नहीं हो सकता, तो इसलिए अंत में एक मनुष्य भव छोड़ना चाहिए। तो उस मनुष्य भव के पहले वाला तिर्यंच भव लेना, तो वो तिर्यंच भव में वो फिर दोबारा प्रथमोपशम समय करेगा आयु के अंत में और गिरकर सासाधन में आएगा, तो उसका इतना लंबा अंतर हो सकेगा। अब हम इसको पढ़ेंगे। 34 पृष्ठ पर आए हैं हम, नीचे का पैराग्राफ दोबारा पढ़ते हैं। सासादन गुणस्थान का एक जीव संबंधी उत्कृष्ट अंतर देशों ने कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, पर यहाँ जो विशेष बात है उसे कहते हैं। अनादि मिथ्यादृष्टि एक तिर्यंच तीनों करणों को करके सम्यक्त को प्राप्त होने के प्रथम समय में अनंत संसार को छेद कर और अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण करके, यानी संसार अभी उसका अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण रह गया, किसी जीव को सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता कब आती है? पहले में पहले तो अभी अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाकी हो तब कोई जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। ऐसे भी कितने जीव होंगे कि अनादि से निगोद में है, मिथ्यात्व में पड़े हैं और निगोद छोड़कर मनुष्य में आए, उसी भव में सम्यक तो प्राप्त किया और उसी भव में मोक्ष भी चले गए, तो उन्हें सम्यक तो प्राप्त करने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन काल नहीं लगा, परंतु अधिक से अधिक किसी जीव को लगता है काल, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल लगता है। इसलिए यहाँ संसार अभी कितना रहा, अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं रहा, अनादि अनंत जो उसका जन्म मरण चलता रहा था अभी उसको स्टॉप आ गया। तो उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सासादन गुणस्थान को गया, पुनः मिथ्यात्व को जाकर और अंतर को प्राप्त हुआ, यानी सासादन में से मिथ्यात्व में गया, उसका अंतर चालू हो गया। फिर अर्धपुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण करके द्विचरम भव में, अंतिम भव तो उसका मनुष्य का रखना चाहिए क्योंकि मनुष्य भव में वो मोक्ष जाने वाला है, उसके पहले भव में पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होकर, वो भी संगी चाहिए क्योंकि अभी उसको सम्यक तो उत्पन्न होने वाला है, और मनुष्यों में आयु को बांधकर, मनुष्य आयु भी बांधना आवश्यक है क्योंकि यदि सम्यक तो प्राप्त किया है और वहीं कहीं आयु बांधता है वो तो जाएगा देव में। हमें ऐसा चाहिए कि अभी वो जल्दी से जल्दी उसके बाद सासादन में आकर गिरने के बाद जल्दी से जल्दी मोक्ष चला जावे, ऐसे जीव हमको चाहिए। तो मनुष्यों में आयु को बांधकर तीनों करणों को करके उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, यानी तिर्यंच भव में ही उपशम सम्यक्त, क्योंकि हमको तिर्यंच सासादन का अंतर देखना था। पुनः उपशम सम्यक्त के काल में मनुष्य गति के योग्य आवली के असंख्यात भाग मात्र काल के अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। क्या कहते हैं, मनुष्य गति के योग्य ऐसा जो अभी क्या है, जो जीव सासादन गुणस्थान में आता है ना और मरता है, तो यदि एक समय में मरेगा सासादन में आकर तो वो नियम से देव में जाएगा, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय, ऐसे आवली के असंख्यात भाग इतने समयों तक मरे तो वो देवगति में, यानी देव में चला जाएगा। अगले वाले आयु आवली के असंख्यात भाग प्रमाण जो काल है वहां वो मरेगा तो मनुष्य में चला जाएगा, यानी कौन से भाग में मरेगा उस पर वो कहाँ जाएगा वो निर्भर है, इसलिए वो पहले भाग में नहीं मरेगा, यहाँ सासादन में आया है तो मनुष्य गति के योग्य जो काल है उसमें मरेगा। मनुष्य गति के योग्य का काल आगे उसके आगे और चले जाए तो संगी पंचेंद्रियों के योग्य का काल होगा, उसके आगे असंगी का होगा तिर्यंच में, उसके आगे चतुर इंद्रिय, तीन इंद्रिय, द्विंद्रिय, एक इंद्रिय तक के, इन्हें कहाँ जाने वाला है वो जीव सासादन में उतना काल बाद वो मरेगा, क्योंकि नीचे की ये जो बातें हैं, यानी तिर्यंच में जो हम देखिए नीचे उतर गए पंचेंद्रिय फिर चतुरेंद्रिय वगैरह, तो संक्लेश अधिक संक्लेश से मरेगा, तो सासादन में आया है और फिर कौन से काल में मरेगा ये बात यहाँ लिखी, क्योंकि अभी वो मनुष्य गति में जाने वाला है तो मनुष्य गति के योग्य काल में मरेगा ऐसा कहते हैं। ये वाक्य मैं फिर पढ़ूंगी, देखो नीचे से सातवीं लाइन, पुनः उपशम सम्यक्त्व के काल में मनुष्य गति के योग्य आवली के असंख्यात भाग मात्र काल के अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उक्त अंतर लब्ध हो गया, यहां तक तो हमने कल भी पढ़ा था, परंतु इस वाक्य का अर्थ समझाने इतना टाइम नहीं था कल, अभी उसको और भी समझा रहे यहाँ पर। आवली के ये अ का आ करना, अवली के हुआ है वो आवली के करना। आवली के असंख्यात वे भाग मात्र काल सासादन गुणस्थान में रहकर मरा और मनुष्य हो गया, यानी सासादन में आते ही उसका अंतर तो समाप्त हो गया, फिर आगे क्या क्या होता है उसको बात, यानी कितना अर्धपुद्गल में से कितना घटाना है, इसलिए उसके बाद अब क्या क्या होगा वो भी बता रहे हैं। ख्याल है ना, क्योंकि बाद का क्यों बताते हैं, अंतर तो पूरा हो गया तो उसके आगे वाला क्यों इतना सब बता रहे कि मरा अभी मनुष्य में उत्पन्न हुआ फिर उसने मुनि पद धारण किया वगैरह वगैरह, ये बातें क्यों, क्योंकि आगे कितना काल हमको अर्धपुद्गल में से घटाना है वो हमको मालूम पड़े इसलिए ये बातें बताए। मनुष्य हो गए, यहाँ पर 7 मास गर्भ में रहकर निकला तथा 7 वर्ष और अंतर मुहूर्त अधिक 5 मास बिताकर, हमने देखा गर्भ में आने के पश्चात 8 वर्ष गिनना है, तो 7 महीने अगर गर्भ में बिताए हैं तो 1 वर्ष के हम अभी 1 वर्ष में से 7 मास यानी 7 महीने निकल गए तो 5 महीने रह गए, वो 5 महीने और पूरे 7 वर्ष, तो 7 वर्ष और अंतर्मुहूर्त से अधिक 5 मास बिताकर, एक अंतर्मुहूर्त और लेना, 8 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात एक अंतर्मुहूर्त के पश्चात क्या होगा, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, पुनः अनंत अनुबंधी कषाय का विसंयोजन करके दर्शन मोहिनी का क्षय कर अप्रमत्त प्रमत्त पुनः अप्रमत्त हो पुनः अपूर्व करणादि 6 अंतर्मुहूर्तों से निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 14 अंतर्मुहूर्तों से तथा आवली के असंख्यातवे भाग से अधिक 8 वर्षों से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन सासादन समय दृष्टि गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। ये कितना छोड़ना है वो अभी हमने देखा, बाद में वो मनुष्य हुआ वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर उपयुक्त अर्थ कहते हैं वह इस हाँ बोलो, देखो मनुष्य में गर्भ में आने का उसको कहते जन्म का समय, तो वहां से 8 वर्ष पूर्ण होने तक सम्यक तो प्राप्ति की योग्यता नहीं है, उसके पश्चात एक अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, तो हमको 8 वर्ष गिनना है, तो जिसने गर्भ में 7 महीने बिताए हैं उसके 8 वर्ष में से कितने बाकी रहे, 7 वर्ष और 5 महीने, तो ये बात यहां बताई। अब यहाँ पर उपयुक्त अर्थ कहते हैं, ये जो हमने कौन से भाग में मरकर कौन से गति में जाता है, हाँ क्या क्या, हाँ उपशम में से 7, हाँ 3 पल्ले की आयु में यदि वो मिथ्यात्व में आता तो देव में चला जाता, तो उसके अर्धपुद्गल परावर्तन में से जो हमको घटाना है वो बात बड़ी हो जाती है, हमको अंतर मैक्सिमम लेना है। वो तिरंज में ही रहेगा, बीच में कहीं अन्य किसी गति में नहीं जाएगा, और यदि हम लास्ट में उसको भोग भूमि में डालते हैं तो उसके पश्चात देव का आयु होगा क्या, कर्मभूमि का ही है ये, आपका प्रश्न फिर पूछना, तो हमको तो मैक्सिमम हमको तो अंतर बढ़ाना है, आप तो काल बढ़ा रहे आगे वाला, सासादन में आने के पश्चात वाला जो आगे का काल हमको कम करना है, बीच वाला अंतर हमको बढ़ाना है, हमको ऐसा कि बाद में कम से कम समय में वो मोक्ष जाना चाहिए, ऐसी बात लेनी हमको। तो अभी ये कौन से भाग में, सासादन में आने के पश्चात कौन से भाग में मरता है और कौन से गति में उत्पन्न होता है, उसके बाद अब कह रहे। देखो, सासादन गुणस्थान को प्राप्त होने के द्वितीय समय में यदि वह जीव मरता है तो नियम से देवगति में उत्पन्न होता है। अब यहाँ तीरंजन की बात कह रहे, ये नारकी पर नहीं घटाना क्योंकि नारकी ना ही देव में उत्पन्न होते हैं ना ही नारक में। हाँ हाँ, ये मनुष्य तीरंज, नारकी तो मनुष्य तीरंज में आते हैं, और मनुष्य तीरंज मरकर पहले भाग में मरकर वो तो देव में जाएंगे, नियम से देवगति में उत्पन्न। इस प्रकार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल देवगति में उत्पन्न होने के योग्य होता है। सासादन में आते ही पहला आवली का असंख्यात भाग है, उसमें कहीं भी मरता है, पहले समय में, दूसरे समय में, चौथे समय में, तो वो देवगति में उत्पन्न होगा। ये सासादन का काल जो हम देखते हैं, अभी यहाँ मरकर, अभी मरकर नहीं, गिरकर, मिथ्यात्व से गिरकर सासादन में आया है, उसका पहला जो आवली का असंख्यात भाग है, यहाँ कहीं भी मरण होता है तो वो देवगति में उत्पन्न होगा। अब आगे, इसके ऊपर मनुष्य गति के योग्य काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। ये सेकंड आवली का असंख्यात भाग है, ये पहला, दूसरा भाग आवली का असंख्यात भाग, उसमें कहीं पर भी मरता है तो मनुष्य गति में उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से आगे संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, अगला वाला जो काल है आवली का असंख्यात भाग, उसमें मरता है तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होगा। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, अभी एक एक ऐसा भाग करते जाना, ये आवली का भी असंख्यात भाग है यानी ये सब मिलकर भी आवली का असंख्यात भाग ही रहेगा, पूरी आवली भी नहीं पूरी पूर्ण होती, असंख्यात भाग है। और ये तो हम अभी संख्या देख रहे हैं, एक देवगति है, फिर मनुष्य गति, और पंचेंद्रिय, असंगी, चतुरेंद्रिय, तीनेंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रिय, ये आठ ही हो गए। ये सब मिलकर भी आवली का असंख्या तो भाग ही रहेगा। तो पहले भाग में देवगति, दूसरे भाग में मरकर मनुष्य गति में जाएगा, फिर संगी, फिर असंगी, फिर चतुरेंद्रिय, तीनेंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रिय। तो कहते इसी प्रकार से आगे संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, चतुरिंद्रिय, त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रियों में उत्पन्न होने योग्य होता है। यह नियम सर्वत्र सासादन गुणस्थान को प्राप्त होने वालों का जानना चाहिए। आप ही बोलो, आप बोलना, समझो। तो नरक वाला मरकर पहले भाग में मरकर कहाँ जाएगा? पहले भाग में मरकर, हाँ, तो वो जैसा जो यहाँ जो यथा योग्य है वहाँ वैसे समझना। देव अगर सासादन में मरेगा तो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए चतुरिंद्रिय, तीनेंद्रिय, द्विंद्रिय हो गए क्या? नहीं हो गए। हाँ, तो यहाँ हमारे तिर्यंच की बात चल रही है, मुख्यतः तिर्यंचों की, और वही नियम मनुष्यों के लिए भी अप्लाई होगा, ये बात यहाँ यथा योग्य समझना चाहिए। जब कोई अभी सर्वत्र कहा है तो यथा योग्य जो जिस गति का जीव जहां जा सकता है उसमें वो लगाना चाहिए। और यहां तो बात तो तिर्यंच गति की, अपनी मार्गणा ही तिर्यंच की चल रही है। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय, नाना जीव ने कोई भी जीव सम्यक मिथ्यात्व में नहीं है, ऐसा कितने काल तक हो सकता है? तो कम से कम एक समय तक ऐसा हो सकता है। और उत्कर्ष से पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण अंतर है, अंतर की बात चल रही है। यहाँ पर द्रव्य काल और अंतर संबंधी अल्प बहुत्व सासादन गुणस्थान के समान है। क्या देखा था हमने? हाँ बोलो, क्या सासादन में क्या अल्प बहुत्व था? याद नहीं? तो संख्या सबसे कम, संख्या भी पल्ले का असंख्यात भाग है, वो सबसे कम, उससे असंख्यात गुणा काल और उससे असंख्यात गुणा अंतर, कल ही हमने देखा था। देखो 33 पेज पर देखो, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, सासादन समय दृष्टि राशि सबसे कम है तो पल्ले का असंख्यात भाग, फिर भी तीनों ही पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, तो कौन सी छोटी बड़ी समझना है? तो जो संख्या है शासाधन वालों की, अधिक से अधिक संख्या, वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग। नाना जीवगत उसी का काल असंख्यात गुणा है, लगातार उसमें जीव रहे 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 तो भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग। और अंतर यानी कोई भी जीव उसमें है ही नहीं, ऐसा भी काल कितना है, तो उससे भी बड़ा है, वो भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग। तो वैसा ही यहाँ भी समझना तीसरे गुणस्थान के बारे में। इसी गुणस्थान का अंतर अभी एक जीव की अपेक्षा बताएंगे। शासाधन में तो हमने जघन्य अंतर कितना देखा था, जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा पल्ले का असंख्यात भाग, क्योंकि शासाधन में ऐसा समझना दोबारा वो उपशम सम्यक तो प्राप्त करके आने वाला है। एक बार उपशम सम्यक तो के बाद दोबारा उपशम होने के लिए बीच में पल्ले का असंख्यात भाग इतना काल जाता है। तो यहाँ परंतु तीसरे में जो आने वाला है, तो तीसरे गुणस्थान से पहले में या चौथे में चला गया और वापिस आ गया, तो कितने काल में आ सकता है एक जीव? हाँ, अंतर्मूर्त में। देखो, इसी गुणस्थान का अंतर एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन में कुछ कम। जैसे सबसे पहले जब सम्यक तो प्राप्त किया था तो तीसरे गुणस्थान में गया था, अब जो अंतिम भव में जो है फिर वो तीसरे में आएगा और फिर पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़ेगा। तिर्यंच में सेकंड लास्ट लेना है, अभी यह तिर्यंच की बात चल रही ना, बराबर है। देखो, एक गुणस्थान इसी गुणस्थान का अंतर एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से देशों न अर्धपुद्गल परिवर्तन काल है। केवल यहाँ जो विशेषता है उसे कहते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि एक तिर्यंच तीनों करणों को करके सम्यक्त के प्राप्त होने के प्रथम समय में अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र संसार की स्थिति को करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और सम्यक मिथ्यात्व को गया, फिर मिथ्यात्व को जाकर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण परिभ्रमण करके द्विचरम भव में पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होकर मनुष्य आयु को बांधकर, पहले मनुष्य आयु बांधी है क्योंकि सम्यक्त्व के बाद तो वो तो देवायु बांधता है ना, इसलिए मनुष्य में डालना है ना उसको अंत में, तो पहले मनुष्यायु बांधकर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होकर सम्यक मिथ्यात्व को गया। इतना लंबा काल बीच में गया है इसलिए फिर उपशम सम्यक्त्व को कहा गया। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ क्योंकि अभी फिर सम्यक मिथ्यात्व से लौटकर सम्यक मिथ्यात्व में आया है इतने लंबे काल के बाद, तो उसका अंतर प्रूव हो गया, अंतर उसका हम बता दिया। इस अंतर के बाद अभी आगे मोक्ष जाने के लिए कितना काल बाकी है उसको कह रहे। पुनः मिथ्यात्व को गया, पुनः इन्हें सम्यक मिथ्यात्व में आया, वहां एक अंतर्मूर्त बिताया, फिर मिथ्यात्व में गया और मरकर मिथ्यात्व में जाने के एक अंतर्मूर्त पश्चात जाते ही नहीं मरा, वहां एक अंतर्मूर्त में मरकर मनुष्य में गया। इसके पश्चात का कथन शासाधन समय दृष्टि के समान ही है, यानी वो गर्भ में 7 महीने रहे, बाद में वो 5 महीने और 8 वर्ष वगैरह वगैरह अंतर्मूर्त में सम्यक्त को प्राप्त किया और आगे का उसका अत्यल्प काल में वो मोक्ष चला गया। यह 17 अंतर्मूर्तों से अधिक 8 वर्षों से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब असंयत समय दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, ये पहले उन्होंने बताया था कि ओग के समान है, तो हमारे लिए ये फिर सब पूरी बता रहे, पहले बताया था ना यहाँ, क्योंकि ये तो सूत्र में शासन सम्मादिट्टि पहुड़ी 33 पृष्ठ पर हमने देखा था। शासाधन से लेकर संयता संयत तक ओग के समान है, ऐसी बातें हमने देखी थी, तिर्यंच ओग के समान है, तो हम भूल जाते हैं ना, इसलिए वो फिर वापस याद दिला रहे। तभी असंयत समय दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि तिर्यंचों में कोई असंयत समय दृष्टि नहीं है, ऐसा कभी तीन काल में नहीं होगा, कोई ना कोई जीव उसमें है। हाँ, नरक में भी देखा ना, चारों गतियों में देखा हमने। हाँ, लोगों को लगता है ना, अरे नारके तो क्या कभी कोई होते होगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से ध का घ करना, उसमें जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से देशों ने अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतरकाल है। अंतर कैसा गिनना भी चौथे में आया है, जघन्य अंतर गिनना है। एक जीव की अपेक्षा ही जघन्य उत्कृष्ट अंतर होगा, नाना जीवों की अपेक्षा तो अंतर ही नहीं है। तो एक जीव की अपेक्षा चौथे गुणस्थान वाला नीचे के कोई गुणस्थान में गया, ऊपर गया और वापस अंतर्मूर्त में लौट के आया, तो उसका वो जघन्य अंतर होगा। उत्कृष्ट अंतर पहली बार सम्यक तो प्राप्त किया, गिर गया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल भ्रमित भ्रमण किया, फिर वापस वो चौथे गुणस्थान को प्राप्त हो, उसको लेना, अधिक से अधिक अंतर लेना। हाँ, यह एक मनुष्य भाव के पहले ही लेना, क्योंकि यह तिर्यंच की ही बात चल रही है, वो तो अभी हर एक जगह समझ लेना। चौथे गुणस्थान वाला तिर्यंच में, वहां भी फिर पहले मनुष्यायु बांधेगा, ख्याल है ना। केवल जो विशेषता है वह कही जाती है। एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तीनों ही करणों को करके प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ और उपशम सम्यक्त के काल में छह अवलिया अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को आकर अंतर को प्राप्त हो गया। ये उत्कृष्ट अंतर बता रहे हैं। वो छह अवली की कंडीशन क्यों डाली? क्योंकि हमको उपशम सम्यक्त का काल घटाना था, तो अंतर का काल बढ़ेगा, इसलिए। हाँ, पा का प्रा करना, उसको प्राप्त हो गया। पश्चात अर्धपुद्गल परिवर्तन काल परिभ्रमण करके द्विचरम भव में, क्योंकि अंतिम भव मनुष्य का भी होना चाहिए, इसलिए तिर्यंचों की बात चल रही है। द्विचरम भव में पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। अब यहाँ सम्यक तो प्राप्त होने से पहले वो पहले आयु बांधेगा मनुष्य आयु। वर्ष मनुष्यों में वर्ष पृथक्त्व की आयु बांधकर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। वर्ष पृथक्त्व की कंडीशन क्यों डाली? उसका अर्थ क्या होता है? देखो, अभी हमने ऊपर जो देखा था ना, 17 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष, वहाँ लिखा नहीं, मगर वैसे ये वहाँ भी समझ लेना, क्योंकि निर्वाण जाता है तो उतनी ही आयु बांधी थी उसने पूर्व भव में। हम मान लेते 9 साल की आयु बांध कर आया है, तो 9 साल की मनुष्य की आयु बांधी है, वो तो घटने वाली नहीं है, है ना। यानी चरम शरीरी है अभी वो, 9 साल का चरम शरीरी है, मोक्ष जाने वाला है 9वें साल में, तो उसमें क्या क्या लेना? अभी उतनी आयुष्य बांधी उसने और फिर इसमें यहाँ सम्यक तो प्राप्त किया, तो उसका अंतर समाप्त हुआ। उसके बाद वो मिथ्यात्व में जाकर मरेगा, जो कुछ होगा, और फिर आगे मनुष्यायु उसकी 8-9 जो हमने जितनी मिनिमम पॉसिबल चाहिए है मोक्ष जाने के लिए, उतनी लेना, यानी 8 वर्ष और इतने अंतर्मूर्त, है ना, उतनी आयु बांधी उसने, तो उतनी आयु के साथ आया और फिर 8 वर्ष पूरे होते एक अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया, फिर आगे वो मुनि योग्य जो कुछ है और वो श्रेणी चढ़कर मोक्ष चला गया। इसलिए वर्ष पृथक्त्व की आयु बांधी उसने, क्योंकि हमको सम्यक्त्व का अंतर पूरा हो गया, आगे हमको कम से कम टाइम रखना है। यदि पूर्व कोड़ी की आयु बांधता तो आगे वाला काल बढ़ जाता, तो अर्धपुद्गल में से जो घटाना है वो काल भी बढ़ जाता है ना, अंतर कम हो जाता है, हमें अंतर अधिक से अधिक चाहिए। तो मनुष्यों में वर्ष पृथक्त्व की आयु को बांधकर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। पीछे आवली के असंख्यातवे भाग मात्र काल के अथवा यहां से लगाकर एक समय कम 6 आवली काल प्रमाण तक उपशम सम्यक्त के काल में अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को जाकर, देखिए अभी सम्यक्त को प्राप्त होते ही उनका अंतर तो समाप्त हुआ, अंतर तो घटित हुआ, अब अंतर के बाद जो काल है वो कम से कम रखना है, ताकि अंतर बड़ा हो जाए, तो कम से कम रखना। पूरा उपशम सम्यक्त का काल रखते तो अंतर मूर्त बड़ा हो जाता, अभी उसमें से ये आवली छह आवली घटानी है, तो पश्चात वाला जो सम्यक्त्व का काल, उसके आगे वाला काल, वो सब घट जाएगा। इसलिए छह आवली पहले ही उपशम सम्यक्त्व के काल में अवशेष रह जाने पर सासाधन गुण स्थान को जाकर मनुष्य गति के योग्य काल में मरा और मनुष्य हुआ। क्योंकि पहले मैं मरता तो देव में जाना पड़ता है ना तो मनुष्य गति के योग्य काल में मरा और मनुष्य हुआ। इसके ऊपर सासाधन के समान कथन जानना चाहिए, यानी वो 7 महीने और 5 मास वगैरह गर्भ में 7 महीने रहा और बाहर आकर 7 वर्ष और 5 महीने प्लस और एक अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया। फिर आगे वो अनंत आनंद का विसंयोजन किया, दर्शन मुनि का क्षय किया, मुनि हो गए, छठा सातवा किया वगैरह वगैरह, वो सभी आ गए। इस प्रकार 15 अंतर्मूर्तों से अधिक 8 वर्ष से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल असंयत समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है, यानी द्विचरम भव तिर्यंच का, उसमें दोबारा उसने सम्यक तो प्राप्त करने पर उसका अंतर तो समाप्त हुआ, उसके पश्चात कितना काल रह गया, तो इतने 15 अंतर्मूर्त और 8 वर्ष, ये अर्ध पुद्गल में से माइनस कर देना। अब संयता संयतों की बात चल रही है, तिर्यंचों की चल रही ना, संयता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी हमेशा संयता संयत तिर्यंच होगे ही। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त, 5वें गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में चला गया, वापस 5वें में आ गया, तो जघन्य अंतर्मूर्त घटित होता है। उत्कर्ष से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल अंतर है, अभी उसको बताएंगे। यहाँ पर जो विशेषता है उसे कहते हैं, एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अर्ध पुद्गल परिवर्तन के आदि समय में उपशम सम्यक्त्व को और संयमा संयम को युगोपत प्राप्त हुआ। अनादि मिथ्या दृष्टि एक साथ ही उपशम सम्यक्त्व के साथ 5वें गुणस्थान में चला गया। उपशम सम्यक्त्व के काल में 6 अवलिया अवशेष रह जाने पर सासाधन को जाकर 5वें में से 2 में गिरा। अंतर बढ़ाना है इसलिए सासाधन में गिरा ला उसको, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व का काल घटा दिया ना उसने, उतने 6 अवली बढ़ा दी, मिथ्यात्व में गया। पश्चात अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल परिभ्रमण करके द्विचरम भव में, तिर्यंचों की बात चल रही है इसलिए द्विचरम लेना, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होकर, यानी वो संगी पंचेंद्रिय हुआ, उपशम सम्यक्त्व को और संयमा संयम को युगपद प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, और वो भी वो जिस पंचेंद्रिय तिर्यंचों में गया है वो तो आयु के अंत की तरफ जाकर, वो क्योंकि अंतर बढ़ाना है, तिर्यंचों में उत्पन्न होने के बाद जल्दी वो संयता संयत को प्राप्त नहीं करना है, आयु के अंत में कुछ काल छोड़कर, कुछ अंतर्मूर्त छोड़कर उसको फिर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पश्चात मिथ्यात्व को गया, आयु बांधकर विश्राम ले। देखो अभी हमने पहले जो देखा था ना असंयत का, जरा निकालना, वहां लिखा था अभी हमने जो देखी थी, वर्ष पृथक की आयु बांधकर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, और यहाँ क्या लिखा है, मिथ्यात्व को गया, मिथ्यात्व को गया, यानी पहले अंतर पूरा किया, बाद में मिथ्यात्व में गया, और फिर पश्चात आयु बांधी। नहीं समझे, मुझे भी नहीं समझे। देखो हमने चौथे का अंतर देखा था, तो चौथे का अंतर देखा था तो वहां क्या बात की थी, देखो वर्ष पृथक्त्व की आयु बांधकर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ था। पहले मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्यायु बांधी थी और बाद में उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ था, क्योंकि हमको वो अंतर बढ़ाना था ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले उपशम सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, 5वां गुणस्थान प्राप्त हुआ, और बाद में मिथ्यात्व में गया फिर, और फिर आयु बांधी, विश्राम ले, मरकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। अशोक भाई आप कहेंगे पहले बाद में क्यों बांधी आयु, पहले क्यों नहीं बांधी? आपका नाम अशोक है, देखो ये क्या है यहाँ, कोई भी आयु अन्य देवगति देवायु के अलावा। अच्छा अभी दे दो उत्तर, उनको नहीं आ रहा है। हाँ देखो ऐसा है, वो बात नहीं है, जिसने आयु का बंध किया है, जिसने मनुष्यायु तिर्यंचायु या नरकायु में से किसी भी आयु का बंध किया हो, उसको तो पांचवा गुणस्थान ही प्राप्त नहीं होता, ये बात कहनी है। पांचवे गुणस्थान वाला मरकर देवगति में जाता है वैसा नहीं कहना। यदि वो पांच अन्य कोई आयु बांधी हो तो पांचवा गुणस्थान ही उसको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए पहले आयु बांधता, पहले देवायु का भी बंध करता, पांचवा तो गुणस्थान मिलता, परंतु बाद में उसका अंतर बढ़ जाता ना बाद का, क्योंकि हमको उसके बाद मनुष्य में डालकर उसको जल्दी मोक्ष पहुंचाना है ना। देखो इन्हें कितनी सूक्ष्मता से विचार करके ये सब बातें लिखी। तो मिथ्यात्व में गया, वह आयु बांध कर विश्राम ले, मरकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। इसके ऊपर सासादन का ही क्रम है, यानी वहां भी मिनिमम वो जो कुछ वर्ष पृथक वाली आयु वगैरह वो सब समझ लेना, यानी कम से कम काल में वो मोक्ष में चला जाएगा। इस प्रकार 18 अंतर्मूर्तों से अधिक, 8 वर्षों से कम, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल, संहिता संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये बाद में मिथ्यात्व में जाने का और आयु बांधने का वगैरह, ये जो अंतर्मूर्त उसमें बढ़ गए हैं और उसके पश्चात अंतर्मूर्त से मरने का, इसलिए वहां जो हमने 15 देखे थे और यहाँ 18 हो गया। ये क्यों बढ़ गए वो समझने लायक है। शंका, तिर्यंचों में संयमाशयम ग्रहण करने से पूर्व ही उस मिथ्यादृष्टि जीव को मनुष्य आयु का बंधक क्यों नहीं कराया? ये मैंने जो प्रश्न पूछा था ना, ये तो उसका मनुष्य आयु का बंध पहले क्यों नहीं हुआ? तो कहते नहीं, क्योंकि मनुष्य आयु को बांध लेने वाले मिथ्यादृष्टि जीव के संयमाशयम का ग्रहण नहीं होता। श्रेणिक राजा क्षायिक समय दृष्टि थे, तो उन्होंने संयम क्यों नहीं ग्रहण किया? तीर्थंकर के पास थे, निमित्त की कोई कमी नहीं थी। हम कहते ना, इतना आप पढ़ रहे हो, दीक्षा कब लेंगे? पहला प्रश्न क्या पूछते हैं हमारे सब रिलेशन, अशोक भाई को मालूम है, आप दीक्षा कब लेंगे? तो उनको नहीं पड़ी थी, उनको किसी ने पूछा नहीं आप दीक्षा क्यों नहीं लेते। ऐसा नियम है, उन्होंने नरकायु पहले बांध ली है, तो जिसने पहले नरकायु बांधी है, नरकायु की तो बात छोड़ ही दीजिए, किसी ने मनुष्यायु भी बांधी हो या तिर्यंचायु भी बांधी हो और बाद में सम्यक तो प्राप्त करता है, मनुष्यों की बात चल रही है, तो वो नियम से चौथे तक ही जा सकता है, उसके आगे का पुरुषार्थ उसका नहीं होता ना, वो पांचवें गुणस्थान वाला होता है ना ही वो मुनि हो सकते हैं, छठे सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं, ऐसा नियम है। देवायु का बंध किया हो तो उसके वो गुणस्थान प्राप्त हो सकते, या आयु का बंध ही नहीं किया हो तो भी प्राप्त हो सकते, तो वहां से लौट कर फिर बाद में आयु का बंध हो सकता है उसको, ऐसे भी हो सकता है। अब आगे, ये तो तिर्यंच इन जनरल्स ऐसी बात हुई। अब यहां पर पंचेंद्रिय तिर्यंच वगैरह जो भेद है उसके, तिर्यंचों के, उनकी बात चलेगी इस सूत्र में। सूत्र पढ़ते हम, पंचिंद्रिय तिरिक्ख, पंचिंद्रिय तिरिक्ख पज्जत, पंचिंद्रिय तिरिक्ख जोनिनीसु, वो एक शब्द है, बीच के डैश निकाल देना, जोनिनीसु एक शब्द है, योनिनी ऐसा ना, योनिमती या योनिनी, और वो जोड़ लेना है वो शब्द एक साथ, तिरिक्ख जोनिनीसु, मिच्छादिठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्यंतरम निरंतरम। उसका अर्थ देखते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यानी हमेशा पंचेंद्रिय तिर्यंच कहो या पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त कहो, पंचेंद्रिय योनिनी है उसमें तो मिथ्या दृष्टि का तो कोई अंतर नहीं हो, वहां उनमें ये गुणस्थान वाले तो हमेशा रहेंगे ही, यह सूत्र सुगम है। अब एक जीव की अपेक्षा क्या अंतर हो सकता है कि नहीं, उसकी बात करेंगे। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान पंचेंद्रियों की बात है। एक जब हम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमोत्तम, तो ये कैसा होगा? मिथ्या दृष्टि है, अन्य गुणस्थान में गया और वापस लौटा, तो उसका वो मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या तो गुणस्थान का अंतर हो जाए। उक्त जीवों में एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि तीनों ही प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंचों के तीन मिथ्या दृष्टि दृष्ट मार्गी जीवों को, ये कौन से तीन मिथ्या दृष्टि? पर्याप्त तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच योनिनी और एक सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच। दृष्ट मार्गी जीवों को, दृष्ट मार्गी ने बहुत बार ऊपर नीचे मिथ्यात्व में से अन्य गुणस्थान में गया है, क्योंकि जो पहले में पहले जाता है उसके लिए काल ज़्यादा लगता है। अब ये बहुत बार जाके आया है तो इसके कम समय लगता है, और हमें यहाँ जघन्य अंतर देखना है। उसको असंयत संयुक्त गुणस्थान में ले जाकर सर्व जघन्य काल से पुनः मिथ्यात्व के ग्रहण कराने पर अंतर्मूर्त काल प्रमाण अंतर पाया जाता है। अब उत्कृष्ट अंतर कहेंगे, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर। उपकस्य न तिन्नी पलिदो वमाणी देसुणानी, उक्त तीनों ही प्रकार के मिथ्यादृष्टि तिर्यंचों का अंतर कुछ कम तीन पल्योपम प्रमाण है। अब इसको देखते हैं, जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाले तीन तिर्यंच है, वो तीन नंबर नहीं लेना, ये तीन प्रकार के तिर्यंच, अथवा मनुष्य तीन पल्योपम की आयु स्थिति वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक कुक्कुट मरकट आदि में उत्पन्न हुए, कौन जीव वहां उत्पन्न हुआ उसकी बात करते हैं। तो तीन पल्ल्य की यानी उत्कृष्ट भोगभूमि वाले उत्पन्न होने वाले ना नारकी होते हैं ना देव होते हैं, वो भोगभूमि में जाते ही नहीं, तो वहां उत्पन्न होने वाले हो गए मनुष्य या पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसमें उत्पन्न हुए। वह दो मास गर्भ में रहकर निकले और मुहूर्त पृथक्त्व से विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुए। जल्दी से जल्दी उनको सम्यक्त प्राप्त कराए ना, तो वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुए। और आयु के अंत में वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुए तो मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया, बराबर है ना? हमको अधिक से अधिक मिथ्यात्व का अंतर एक जीव की अपेक्षा देखना है, तो वहां तो मिथ्यात्व के साथ जन्मा और फिर अंतर्मूर्त में सम्यक्त प्राप्त किया लिया, तो उसका मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया। अब आयु के अंत तक लेना, आयु के अंत में आगामी आयु को बांध कर मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, यानी सम्यक्त्व की अवस्था में ही आगामी आयु बांधे और मिथ्यात्व में गए। कौन सी आयु बांधे गए, क्यों? हाँ, मिथ्यात्व में जाकर बांधता तो पॉसिबल थे भोग भूमि का जो देखो भोग भूमि का मिथ्यात्व हो या सम्य दृष्टि हो, वो तो देव की ही आयु बांधेगा, ख्याल है? अब यहाँ क्या कहते हैं, पहले उसने सम्यक्त अवस्था में ही आयु बांधी, क्योंकि आयु बांधने का जो काल है उसके बाद जो विश्राम का काल है वो सब वो अंतर बढ़ाना है ना, तो इसलिए पहले ही आयु बांधे। हमको अंतर देखना है, जाएगा तो देव में, कितना काल बिताएगा बाद में उसकी बात नहीं है। यहाँ पर एक युग की अपेक्षा अधिक से अधिक अंतर मिथ्यात्व का यहाँ देखना है। तो पहले आयु को बांधकर फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, इस प्रकार से अंतर प्राप्त हुआ। पुनः अब बाद में क्या क्या करेगा वो बात बता रहे। सम्यक्त्व को प्राप्त कर और मरण करके सौधर्म ईशान देवों में उत्पन्न हुए। सम्यक्त्व के साथ आयु बांधी उन्होंने, सौधर्म ईशान की बांधेंगे, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि भोग भूमि के जीव है, तिर्यंच हो या मनुष्य, नियम से सौधर्म ईशान में जाते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि है वो भवनत्रिक में जाते हैं, ऐसा नियम है। इस प्रकार इन दो अंतर्मूर्तों से और मुहूर्त पृथक्त्व से अधिक दो मासों से कम तीन पल्लोपम काल तीनों जाति वाले तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब उक्त तीनों प्रकार ऊपर पढ़ना रह गया, सासादन की वगैरह बात करेंगे। शासन सम्मा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी नम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। ये तीन प्रकार के तिर्यंचों में ही अभी सासादन और सम्यक मिथ्यात्व लगा रहे। पहले हमने सभी तिर्यंचों में बात की थी, अब यहाँ अपना क्राइटेरिया पंचेंद्रिय का है, पंचेंद्रिय पर्याप्त का है और योनिनी का है। उक्त तीनों प्रकार के तिर्यंच सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय होता है। जो हमने गुणस्थान में देखा था वैसे यहाँ जघन्य से एक समय। जैसे पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक सासादन सम्यक दृष्टि जीवों का प्रवाह, प्रवाह है ने उसमें अन्य अन्य जीव उत्पन्न होते रहेंगे नाना जीवों की अपेक्षा प्रवाह का, कितने ही काल तक निरंतर आया। तो क्या ऐसे अनादि अनंत निरंतर उसमें रहेंगे जीव? तो नहीं, बाद में अंतर जरूर पड़ता है। पुनः सभी सासादन जीवों के मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाने पर एक समय के लिए सासादन गुणस्थान का विरह होकर द्वितीय समय में उपशम सम्यक दृष्टि जीवों के सासादन गुणस्थान को प्राप्त होने पर एक समय प्रमाण अंतरकाल प्राप्त हो गया। यानी एक समय अंतर पड़ा और दूसरे समय में उपशम सम्यक दृष्टि कोई उसमें आ गए, तो अंतर एक समय में ही अंतर समाप्त हुआ, ऐसा भी हो सकता है। या अधिक से अधिक कोई भी जीव नहीं है, कोई भी जीव उसमें आया ही नहीं है, ऐसा कितने काल तक चलेगा? तो ये पल्ले का संख्या था। इसी प्रकार तीनों जाति वाले तिर्यंच सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का भी अंतर कहना चाहिए। तो यहाँ तो जघन्य अंतर की बात करें, अब उत्कृष्ट बात करेंगे। उक्कसेन पलिदो वमस्स असंख्ये यदि भागो, ये हमने बहुत बार घटित किया है इसको, फिर भी देखते हैं। ये पल्ले का असंख्यात्व भाग जो काल है वो सासादन के लिए है कि सम्यक मिथ्यात्व के लिए है? हाँ मंजू बेन, एक जीव की अपेक्षा सासादन के लिए है कि सम्यक मिथ्यात्व के लिए है? देखो सम्यक मिथ्या दृष्टि तो पहले स्थान में गया और वापस आ गया जघन्य है ना, और इसका यहाँ जघन्य काल बता रहे पहले में उक्कस से ना अभी हम नाना जीवों की अपेक्षा देख रहे हैं। सॉरी एक जीव की अपेक्षा अभी बात आने वाली है, नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर देख रहे अभी। तो नाना जीवों की अपेक्षा दोनों में सेम है, बराबर है। मैं एक जीव की अपेक्षा में चली गई और ये नाना जीवों की चल रही बात। तो उक्त तीनों प्रकार के तिर्यंच सासादन और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। जैसे तीनों ही जाति वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि सभी जीवों के अन्य गुणस्थान को चले जाने पर इन दोनों गुणस्थानों का पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में उत्कर्ष से पल्लोपम के असंख्यात्व भाग मात्र अंतर होकर पुनः दोनों गुणस्थानों के संभव हो जाने पर उक्त अंतर प्राप्त हो जाते हैं। यानी पल्ले के असंख्यात्व भाग इतने समय तक उसमें कोई जीव नहीं है, ऐसे हो सकता है, और नाना जीव की अपेक्षा है ना, और बाद में फिर उसमें आते रहे सासादन में भी और सम्यक मिथ्यात्व में भी। अब एक जीव की अपेक्षा अब चलेगी इस सूत्र में। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन पलिदो वमस्स असंख्ये यदि भागो अंतोमुत्तम। दो गुणस्थान है तो दोनों का प्रमाण अलग अलग है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल सासादन के लिए पल्ल्य का संख्यात्व भाग, जघन्य काल जघन्य अंतर दोबारा वापस लौटने का काल, और तीसरे गुणस्थान के लिए एक अंतर मुहूर्त में वापस तीसरे में जा सकता है। सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लोपम के असंख्यात्व भाग और अंतर मुहूर्त है। बहुत बार हमने इसको देखा। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक सासादन सम्यक दृष्टियों का पल्लोपम के असंख्यात्व भाग और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर मुहूर्त प्रमाण एक जीव का जघन्य अंतर होता है, शेष सुगम है। उक्कसेन तिन्नी पलिदो वमानी पूव कोड़ी पुधत्तेन अभियानी, अभियानी ने अधिक क्या कहते हैं, उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती तीनों प्रकार के तिर्यंचों का अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्लोपम है। अपनी बात चल रही है पंचेंद्रिय तिर्यंचों की, तो यहां लगातार पंचेंद्रिय तिर्यंचों में हो उनकी बात करनी है। तो उनके अधिक से अधिक कितने काल तक वो तिर्यंच पंचेंद्रिय बने रह सकते हैं उसकी बात करेंगे हम, और उसमें से थोड़ा घटा देंगे, अंतर देखना है ना इनमें से। पहले पंचेंद्रिय तिर्यंच सासादन समय दृष्टि का अंतर कहते हैं। जैसे कोई एक मनुष्य नारकी अथवा देव सासादन गुणस्थान के काल में एक समय अवशेष रह जाने पर पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, सासादन के साथ वो पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ, एक समय की कंडीशन क्यों डाली है, एक ही समय में हमको वो अंतर चालू हो गया, पंचेंद्रिय में आया और एक समय में ही मिथ्यात्व को चला गया, तो उसका अंतर चालू हो गया। उनमें 95 पूर्वकोटि काल से अधिक तीन पल्लोपम बिताकर, ये कैसे घटित करना 95 पूर्वकोटि, कौन बताएगा, मॉनिटर बताएंगे। हाँ बोलो भाई देवेंद्र भाई, अब बोलो आप 95 पूर्व कोटि बोलो, आपको मालूम है ये हुआ था यहाँ। अपना क्राइटेरिया क्या चल रहा है, पहले में पहले पंचेंद्रिय तिर्यंच है, तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में लगातार हमको भव गिनने हैं। तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच लेते हैं अभी हम, तो संगी में तो पुरुष वेदी वाले हैं, स्त्री वेदी वाले हैं, नपुसक वेदी वाले हैं, तो लगातार उसके 8-8 भव गिनेंगे, कितने हो गए 24वें। फिर असंगी के भी तीनों वेद वालों के 24 और 24 48वें। अपना क्राइटेरिया किसका चल रहा है, पंचेंद्रिय तिर्यंच, वो अपर्याप्त है कि पर्याप्त है इसके हमको कुछ लेना देना नहीं, 48 हो गए, बीच में एक भव लब्धि अपर्याप्त का क्षुद्र भव का कर दिया, और फिर दोबारा 48 उसके हो सकते भव, तो 48 के बदले हमको 47 ही लेना है, अंतिम भव भोग भूमि का लेना है। पहले आया था नहीं, अभी याद आ गया, तो ये कितने हुए इसके 95 हो गए 95, तो 95 पूर्व कोटि प्लस अंतिम भव तीन पल्ले वाला, इस तरह से उसके, इसको भी पूर्व कोटि पृथक्त्व कह दिया उन्होंने, पृथक्त्व में भी इसको गिना था, कोटि पृथक्त्व में, इसे पहले भी आया था ये सूत्र, तो इस तरह से घटित होते हैं। देखो यहाँ हम कहाँ पढ़ रहे थे, 95 पूर्व कोटि काल से अधिक तीन पल्लोपम बिताकर अंत में आयु का एक समय अवशेष रह जाने पर उपशम सम्यक्त पूर्वक सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, यानी एक अंतर्मूर्त पहले उपशम सम्यक्त में आया और आयु का एक समय बाकी है तब सासादन में आया, यानी सासादन में आते ही एक समय में मरा, ऐसा सासादन में आते ही काल तो पूरा हो, इसका अंतर पूरा हो गया। अंतर कब, हमने पहले ये 95 पूर्व कोटि थी उसके पहले में पहले जब उसने सासादन में आया था, फिर गिरकर मिथ्यात्व में चला गया था, ये उसका अंतर चल रहा था, इतने 95 पूर्व कोटि और तीन पल्लोपम इतना सब काल मिथ्यात्व अवस्था में उसने बिताया, और फिर जाके अंत में एक अंतर्मूर्त पहले उपशम सम्यक तो प्राप्त हुआ और गिरकर सासादन में आते ही एक समय में देव हो गया, तो वह अंतिम एक समय लेना ना उसका अंतर, वह उसमें सासादन में आते ही उसका अंतर समाप्त हो गया तो देव हो गया। इस प्रकार दो समय कम, ये दो समय में अभी का एक समय, और जब भी मरकर पंचेंद्रिय में शासादन के साथ आया था तभी का एक समय। यहाँ समयों की भी गिनती है, देखो अपनी स्थिति, अपनी स्थिति यानी कितनी स्थिति, हाँ 95, 95 पूर्व कोटि और तीन पल्ल्य, ये अपनी स्थिति होगी किसकी, पंचेंद्रिय तिर्यंचों की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, अपनी स्थिति। शासन गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर होता है, यानी उनको अन्य भाव में अन्य गति में भेजे बिना हमको पंचेंद्रिय तिर्यंच गिनने हैं, इतना उसका उत्कृष्ट काल हो सकता है, ये बात बतानी। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच सम्यक मिथ्यादृष्टियों का अंतर कहते हैं, मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला कोई एक मनुष्य संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच सम्मूर्छिन पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, यहाँ सम्मूर्छिनों में डाला और वहाँ किस में डाला था, हाँ गर्भज में डाला था ना, और वहाँ उपशम सम्यक तो प्राप्त कराया था, अब यहाँ वेदक सम्यक दृष्टि करेंगे उसको, क्यों तो अधिक अंतर कैसे हुआ,
ये तो नहीं वो समय को प्राप्त कर लेता है।
हाँ तो वेदक क्यों लिया और वहाँ उपशम क्यों लिया, उपशम सम्यक शासादन के लिए उपशम का जरूरी है, तो वहाँ उपशम से आया। हाँ और वहाँ तो शासादन में ही आया था, अन्य पहले गति में उपशम से मरकर आया था। देखो छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, जन्मा तो सादी मिथ्या दृष्टि, और अंतर्मूर्त में भी तीसरा गुणस्थान प्राप्त हुआ डायरेक्ट, सम्यक तो में जाने की जरूरत नहीं, पहले सादी मिथ्या दृष्टि तीन प्रकृति है उसके दर्शन मोह की, पहले से तीसरे में आया, तथा अंतर को प्राप्त होकर फिर तीसरा गुणस्थान छूट गया, उसका अंतर शुरू हुआ। 95 पूर्व कोटि काल प्रमाण उन्हीं तिर्यंचों में परिभ्रमण करके तीन पल्लोपम की आयु वाले तिर्यंचों में उत्पन्न होकर और अंत में प्रथम सम्यक्त को ग्रहण करके, ये प्रथम सम्यक्त यानी क्या, क्यों तीन पल्ले की जो आयु है और पल्ले के असंख्यात भाग में ही उसकी उद्वेलना हो जाती है, इसलिए अब उसको प्रथम उपशम करना पड़ेगा, प्रथम सम्यक्त यानी प्रथम उपशम सम्यक्त, प्रथम उपशम सम्यक्त को ग्रहण करके सम्यक मिथ्यात्व को गया, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पीछे जिस गुणस्थान से आयु बांधी थी उसी सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने नियम देखा था तीसरे गुणस्थान में आने के पहले आयु बांधी है, सम्यक्त्व के साथ आयु बांधी हो तो सम्यक्त्व के चौथे में जाके मरेगा और मिथ्यात्व में आयु बांधी हो तो मिथ्यात्व में जाकर मरेगा, वो तीसरे में नहीं आया था, इतना ही लेना है ना, बीच में देवों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह अंतर्मूर्तों से कम अपनी स्थिति ही इस गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर है, अपनी स्थिति यानी वही 95 पूर्व कोटि देना। यहाँ जो अंतर्मूर्त शब्द है अनमुहूर्त हुआ, अनमुह अंतर्मुह करना उसको। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों का उत्कृष्ट अंतर जानना चाहिए, विशेषता यह है कि 47 पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में कितने पूर्व कोटि होगी बता दिया इन्होंने, क्या लिखा है 47 पूर्व कोटि, ऐसा क्यों, वहां कितने देखे थे हमने 95 95, अब यहाँ 47 ही क्यों, हाँ देखो वहाँ हमने 48 और 48 भोग देखे थे, उसके बीच में लब्धि अपर्याप्तक देखा था, लब्धि अपर्याप्तक पंचेंद्रिय, 47 और 48 वा तो पल्लोपम वाला 48 भोग, पर्याप्तों के 48 भव ऐसा लिया, उसी में वो अंतिम भव हमने भोगभूमि का लिया था और बीच में लब्धि अपर्याप्तक का एक भव लिया था, तो उसकी संख्या पूर्व कोटि वाले 95 हो गए थे और अंतिम भव 3 पल्ले का दिया था। अब यहाँ अपनी पर्याप्तों की बात है, तो लब्धि अपर्याप्तों का बीच में भव नहीं हो सकता, तो 48 ही भव होंगे। 48 में अंतिम भव 3 पल्ले का लेना है तो पहले 47 पूर्व कोटि रह गए, इसलिए 47 ये यहाँ गैप छूटा है वो नहीं चाहिए। 47 पूर्व कोटियां और पूर्वोक्त दो समय और 6 अंतर मूर्तों से कम 3 पल्लोपम काल इनका उत्कृष्ट अंतर होता है। इसी प्रकार योनिमतियों का भी अंतर जानना चाहिए। अब योनिमतियों में हम कैसे काउंट करेंगे, कितनी पूर्व कोटियां लेंगे हम, अभी वही फॉर्मूला है अपना 46। आप क्या कहते हैं अरविंद भाई, पढ़ो मत। हाँ, योनिमतियों में क्या होगा, अभी कितनी पूर्व कोटि लेनी पड़ेगी, हाँ अब उनको बोलने दो। हाँ,
8 है वो काट डालना पड़ेगा,
8 ही लेना पड़ेगा। जैसे संगी के 8 और असंगी के 8 16 हो जाते हैं, और वो भी उसमें से एक कम करके भोग भूमि वाला एक उसमें डालना है ना हमने को, 15 होते, क्योंकि उसके योनि मत ही वो छुड़ना नहीं चाहिए, वो पंचेन्द्रिय तिरियंच योनि नहीं, यानी वो स्त्रीवेदी ही रहना चाहिए। ये जो हमने 48 वगैरह लिए थे तो हर एक के वेद वाले के 3-3 लिए, 8-8 लिए थे, पुरुष वेदी के 8, स्त्रीवेदी के 8, नपुसक वेदी के 8। अभी अपना क्राइटेरिया ही योनिमति का है, इसलिए संगी के और असंगी के मिलकर 8-8-16 हो जाते हैं, उसमें अंतिम भव हमको 3 पल्ले वाला लेना है, इसलिए 15 पूर्व कोटि गिनेंगे यहाँ। क्या लाए, क्यों नहीं अभी समझा, अकेले स्त्रियों का लेना है, तो अकेले स्त्रियों के 8 हो गए संगी के और 8 हो गए असंगी के, तो वो संगी वाला एक बाद में रखना है हमको 3 पल्ले वाला का, तो एक पूर्व कोटि उसमें से कम कर देना, तो उसमें 8 और 7 15 हो जाते हैं। देखो पढ़ेंगे हम यहाँ सेकंड लाइन में हमने पढ़ा, इसी प्रकार योनिमतियों का भी अंतर जानना चाहिए, केवल उनके सम्यक मिथ्या दृष्टि संबंधी उत्कृष्ट अंतर में विशेषता है उसे कहते हैं। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला एक नारकी देव अथवा मनुष्य पंचेंद्रिय तिरियंच योनिमति कुक्कुट मरकट आदि में उत्पन्न हुआ, 2 मास गर्भ में रहकर निकला, वह मुहूर्त पृथक्त्व से विशुद्ध होकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, पश्चात मिथ्यात्व में जाकर पंद्रह पूर्व कोटि काल प्रमाण परिभ्रमण करके देवकुरु उत्तर करु इन 2 भूभूमियों में उत्पन्न हुआ। आगे क्या लिखा है, इस प्रकार अंतर को प्राप्त हो गया। अंतर तो तब कहते जब दोबारा सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होता है ना, यह अंतर कहाँ सिद्ध हुआ, बोलो भाई आप क्या कहते, क्या कहा फिर हम पढ़ेंगे, योनिमति हुआ, योनिमति के बाद 2 मास गर्भ में रहकर मूर्त पृथक्त्व से विशुद्ध होकर तीसरे गुणस्थान में आया, एक अंतर मूर्त रहकर मिथ्यात्व में चला गया, बराबर। फिर 15 पूर्व कोटि काल प्रमाण परिभ्रमण करके देवकुरु उत्तर कुरु किसका नाम है, उत्तम भोगभूमि का 3 पल्ले वाली, वहां उत्पन्न हुआ, तो वहां उत्पन्न हुआ इस प्रकार अंतर प्राप्त हो गया। तो वहां उत्पन्न होने से अंतर कैसे होगा, नहीं हो सकता, तो ऊपर पढ़ेंगे हम प्राकृत में, ऊपर से पांचवी लाइन लिखते हैं, पहले पांचवी देखते हैं, अंत में पन्नारस पूर्व कोडियो परिभ्रमीय, यानी 15 पूर्व कोटि परिभ्रमण करके कुरवेश वन्नो, कुरुओं में उत्पन्न हुआ। कुरुओं ने दो कुरु है ना, उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु, देव कुरु। वहां आगे क्या लिखा है वाक्य, सम्मतेन वा मिच्छतेन वा अच्छिय अवसाने सम्मा मिच्छत्तम गदो। उसका अर्थ है सम्यक्त्व या मिथ्यात्व उसको प्राप्त होकर या वहां से रहकर, अच्छी यानी रहकर, सम्यक्त्व में या मिथ्यात्व में रहकर, अभी अवसान यानी आयु के अंत में, अवसान होना हम कहते हैं ना, देहावसान हुआ यानी मरण हुआ, अवसान यानी आयु के अंत में सम्मा मिच्छत्तम गदो, सम्यक मिथ्या दृष्टि हुआ तभी तो अंतर समाप्त हो जाएगा, अंतर प्राप्त होगा। बिना तीसरे में आए उसका अंतर प्रूव कैसा होगा, तीसरे में से गया था, 15 पूर्व कोटि और 3 पल्लेपम भरा ब्रह्म किया था, बाद में जब तीसरे में आएगा, 3 पल्ले की आयु के अंतिम भाग में तीसरे में आएगा तब उसका अंतर समाप्त होगा। तो ये एक वाक्य वहां से छूट गया है, तो अभी ये वाक्य नीचे डालना, कहा दो भोग भूमि में उत्पन्न हुआ लिखा है ना, उसके बाद एक एरो करके नीचे ले आना पेज के नीचे, इस प्रकार के पहले क्या डालना है, अब मैं पढ़ूंगी। सम्यक्त्व में या मिथ्यात्व में रहकर भोग भूमि में उत्पन्न हुआ ना, वहां की बात चल रही है, यानी भोग भूमि में, वहां सम्यक्त्व में या मिथ्यात्व में रहकर आयु के अंत में सम्यक मिथ्यात्व में गया, जब कोई पढ़ने पर अर्थभाषित नहीं होता है तो प्राकृत में पढ़ना चाहिए। हाँ नहीं नहीं अभी तो आसान है ना, अभी मुझे भी अच्छी और अवसाने का अर्थ नहीं समझ रहा था, तो दो चार पलटे पढ़ने आगे पीछे देख लिया, अच्छी शब्द कहाँ कहाँ आया था, उसका नीचे क्या अर्थ किया है, ये हमको कौन, ये तो पुस्तक ही पढ़ा रहे ना, उसमें से तो अपने को अर्थ निकालना है, और अवसान का अर्थ फिर वो यहाँ क्या, वो भी शब्द पहले आ चुका है तो वहाँ ट्रांसलेशन क्या किया है, ऐसे देखते हैं हम, ये आपके साथ ही पढ़ रहे हैं ना। देखो ये हो गया ना, अभी सम्यक मिथ्यात्व में गया, इस प्रकार अंतर प्राप्त हो गया, यानी वो अभी अंतर हो गया ना उसका, बाद में फिर सम्यक मिथ्यात्व में आ पहुंचा। पश्चात जिस गुणस्थान से आयु को बांधा था उसी गुणस्थान से मरकर देव हुआ। इसी प्रकार देव तो होना ही है, भले मिथ्यात्व में जाकर मरे या सम्यक्त्व में, क्योंकि ये भोग भूमि वाला है। इसी प्रकार तीन अंतर्मूर्त और मूर्त पृथक्त्व से अधिक दो मासों से हीन पूर्व कोटि पृथक्त्व, वह हुआ उसको पूर्व करना। अब यहाँ पृथक्त्व का अर्थ कितना हुआ है, हमने देखा था अभी पूर्व कोटि पृथक्त्व, कितने पृथक्त्व में कितना लेना, यहाँ पर योनिमति की बात चल रही, 15 पूर्व कोटि है ना, सॉरी दो मासों से, ये किसकी बात चल रही है अभी, योनिमति की, हाँ तो 15 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्लोपम काल उत्कृष्ट अंतर होता है। नहीं नहीं सम्यक मिथ्यात्व संबंधी चल रही है क्या, बराबर है, हाँ योनिमति कौन की चल रहा है। अब कहते हैं शंका, सम्मूर्छिम तिर्यंचों में उत्पन्न कराकर पुनः सम्यक मिथ्यात्व को क्यों नहीं प्राप्त कराया, उसमें यदि प्राप्त कराते तो अंतर बढ़ जाता, क्यों, क्योंकि सम्मूर्छन है वो अर्लिएस्ट तीसरे में जा सकते थे, जैसे पहले हमने देखा, यहाँ देखो इसको पढ़ेंगे, देखो यहाँ पहले पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ, पंचेंद्रिय तिर्यंच सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर कहते हैं, इन जनरल बातें, मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला कोई एक मनुष्य संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच सम्मूर्छिम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ और सम्यक मिथ्यात्व में गया। अर्लीएस्ट हुआ उसका, पहले से तीसरे गुणस्थान में गया। तो यहाँ कहते हैं, अब यहाँ तो आपने वो दो मास गर्भ में रखा, बाद में मुहूर्त पृथक्त्व में विशुद्ध हुआ, फिर अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया, तो इतना काल क्यों गवाया? सम्मूर्छन में ही डाल देते तो क्या ऐसा हो सकता था? हाँ, तो सम्मूर्छिम में नपुसक वेद होता है, स्त्री पुरुष वेद उनमें नहीं होता, सम्मूर्छिम तिर्यंचो। तो यहाँ शंका क्या थी? सम्मूर्छिम तिर्यंचो में उत्पन्न कराकर पुनः सम्यक मिथ्यात्व को क्यों नहीं प्राप्त कराया? जैसे उन्होंने पंचेंद्रिय तिर्यंच इन जनरल में कराया था, तो यहाँ तो योनिमति है, तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि सम्मूर्छिम जीवों में स्त्री वेद का अभाव है। तो शंकाकार ने पूछा, सम्मूर्छिम जीवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद क्यों नहीं होते? शंका में ही उन्होंने बताया कि अकेले स्त्री वेदी नहीं, पुरुष वेदी भी नहीं होते, क्योंकि आचार्यों का उद्देश्य तो हमें समझाना है। शंकाकार के मुंह में रखने से हमें भी पता चले ना कि वहाँ ना ही स्त्री वेद होता है ना ही पुरुष वेद होता है। समाधान, स्वभाव से ही नहीं होते, यानी वहाँ एकमात्र नपुंसक वेद ही पाया जाता है, ऐसा ही वहाँ का स्वभाव है, ये बात वहाँ बताना चाहते हैं। ये पंचलब्धि में लिखा था ना मैंने, सम्मूर्छन तिर्यंच अंतर्मूर्त में प्राप्त करते हैं वगैरह, संगी पंचेंद्रिय होते, तो उस पर भी किसी ने ऑब्जेक्शन, वो कहीं से फोन आया था ना राजकोट से का कहीं से आया था, आपने ये सम्मूर्छन की बात की, ने बोला स्वामी जी के प्रवचन में भी कितने बार आया था ये असंख्यात सम्मूर्छन पंचेंद्रिय वहाँ पांचवें गुणस्थान में। वेदक समय दृष्टि होती ना, प्रथमोपशम नहीं होता, प्रथमोपशम के लिए तो गर्भज होना ही कंडीशन है तिर्यंच के लिए, तिर्यंच मनुष्य के लिए, परंतु क्षोपशम समय दृष्टि वो सम्मूर्छिम जीव भी प्राप्त कर सकते हैं, पांचवा गुणस्थान भी हो सकता है उनका। तो अब आगे का सूत्र 46, असंजत सम्मादिठिनम अंतरम केवचरम हुआ है, केवचिरम कालादो हो दी ची करना उसको, केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। उक्त तीनों असंयत समय दृष्टि तिर्यंचों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, यानी उनमें हमेशा ही समय दृष्टि जीव होंगे, क्योंकि असंयत समय दृष्टि जीवों से विरहित पंचेंद्रिय तिर्यंचत्रिक किसी भी काल में नहीं पाए जाते। अब अगला सूत्र, एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतोमोत्तम। उक्त तीनों असंयत समय दृष्टि तिर्यंचों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि वहां से वो नीचे के गुणस्थान में आएगा और फिर वापस लौटेगा, क्योंकि देखा है मार्ग को जिन्होंने, दिट्ठमग्ग कहा था ना उनको, मार्ग जिन्होंने देख लिया है, देखा है मार्ग जिन्होंने, ऐसे तीनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच असंयत समय दृष्टि जीवों के अन्य गुणस्थान को प्राप्त होकर अत्यल्प काल से, अति अल्प काल से यानी छोटे में छोटे अंतर्मूर्त से पुनः उसी गुणस्थान में आने पर अंतर्मूर्त काल प्रमाण अंतर पाया जाता है, यानी चौथे गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में गए और वापस लौटे। अब 48 नंबर, उक्कस से न यानी चौथा गुणस्थान है और ये तीन प्रकार के तिर्यंच है, तो उत्कृष्ट अंतर अभी बता रहे, यानी चौथे गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में गया और वापस चौथे में आना, उसके लिए उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है? उक्कस से न तिन्नी पलिदो वमाणी पूव कोढ़ी पुधत्ते न अब बहियाणी। क्या कहते हैं? उक्त तीनों असंयत सम्यक दृष्टि, वो टी हुआ है उसको श्ट कर, श लगाना, आधा श लगाना। 48 नंबर के सूत्र में तीसरा शब्द है ना, तीनों असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंचों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्लोकम काल है। तीनों को एक साथ बताया है और पूर्व कोटि पृथक्त्व कहा, तो सामान्य तिरंचों के लिए पूर्व कोटि पृथक्त्व उसकी संख्या अलग है, पर्याप्तों के लिए अलग है और योनिमति के लिए अलग होगी। ख्याल है ना? पहले पंचेंद्रिय तिरंच असंयत सम्यक दृष्टियों का अंतर कहते हैं। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मनुष्य संगी पंचेंद्रिय तिरंच पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। वह 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त को प्राप्त हो, संक्लिष्ट हो, मिथ्यात्व में गया। क्योंकि असंयत का अंतर बताना है, समय दृष्टि हुआ और फिर मिथ्यात्व में आ गया। अंतर को प्राप्त होकर 95 पूर्व कोटियां बिताकर, ये अभी अभी हमने देखा था ना, 95 कैसे, पहले तो संगी में जन्मा था, फिर वो संगी असंगी के मिलकर वहां तो 48 हो जाएंगे एक लब्धि पर्याप्त का, और फिर संगी असंगी के 47। 3 पल्योपम की आयु स्थिति वाले उत्तम भोग भूमिया तिरंचों में उत्पन्न हुआ और जीवन के अल्प अवशेष रहने पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, चतुर्थ गुणस्थान से वापस चतुर्थ गुणस्थान आया उसका, यह अंतर हुआ बीच वाला। पश्चात उपशम सम्यक्त के काल में 6 अवलिया अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान में जाकर मरा और देव हुआ। बाद में काल घटाना है इसलिए उपशम सम्यक्त को और उसमें भी 6 अवली घटा दिए, और सासादन में आते ही एक समय में मरा और देव हुआ, वहां भी काल घटाया। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्तों से हीन शब्द चाहिए बीच में, 5 अंतर्मूर्तों से हीन, 95 पूर्व कोटियों से अधिक, 3 पल्योपम प्रमाण काल, पंचेंद्रिय तिरंच असंयत समय दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब पंचेंद्रिय पर्याप्तों में बताएंगे। तो पर्याप्तों में कितने पूर्व कोटि देखी थी हमने? 47। पंचेंद्रिय तिरंच पर्याप्तकों में भी इस प्रकार होता है। विशेषता यह है, इनके 47 पूर्व कोटियां ही अधिक होती है। वो व का उसके ऊपर रफा देना, पूर्व कोटियां, तीसरे लाइन में पहला शब्द। अब यहां लिखा है केवल जो थोड़ी विशेषता है उसे कहते हैं, परंतु उसके पहले एक वाक्य छोड़ गया है, ऊपर देखना, देखो सेकंड लाइन में, पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनिनिषु वि एवं चेव, यानी पंचेंद्रिय तिरंच योनियों में भी इसी प्रकार होता है। ये एक पूरा वाक्य छूट गया है, क्योंकि आगे जो विशेषता बताई है वो योनियों की बताई है, और जो वो ट्रांसलेशन वाला वाक्य वहां नहीं रहा। देखो फिर पढ़ती हूँ मैं, पूर्व कोटियां ही अधिक होती है यहां तक हमने पढ़ा, उसके बाद एरो करना और नीचे एक पूरा वाक्य लिख देना, पेज के नीचे उसको एक वाक्य लिख देना, नीचे क्या लिखना है, पंचेंद्रिय तिरंच योनियों में भी इसी प्रकार होता है, पंचेंद्रिय तिरंच योनियों में भी इसी प्रकार होता है। लिखा, अब उसमें केवल जो थोड़ी विशेषता है उसे कहते हैं, वो तो वाक्य है आगे का, यानी योनियों में क्या विशेषता है उसको भी बताएंगे। वह इस प्रकार है, मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव पंचेंद्रिय तिरंच योनिमतियों में उत्पन्न हुआ। 2 मास के पश्चात गर्भ से निकलकर मुहूर्त पृथक्त्व में, वो मुंह के ऊपर रफार नहीं चाहिए, खाली मुंह लिखना, मुहूर्त पृथक्त्व में वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ। वह संक्लिष्ट हो मिथ्यात्व में जाकर, यानी सम्यक्त प्राप्त हुआ और संक्लेश के कारण फिर मिथ्यात्व में गया, यानी उसका अंतर चालू हो गया, चतुर्थ गुणस्थान का अंतर चालू हो गया। मिथ्यात्व में जाकर अंतर को प्राप्त हो 15 पूर्व कोटि काल परिभ्रमण करके, ये तो हमने पहले देखा था कैसा है हिसाब उसका, 3 पल्लोपम की आयु स्थिति भोग भूमियों में उत्पन्न हुआ। वहां आयु के अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पुनः उपशम सम्यक्त के काल में 6 आवलिया अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ और मरकर देव हो गया। इस प्रकार 2 अंतर मूर्तों से अधिक, 2 मासों से कम अपनी स्थिति, अब अपनी स्थिति कितनी है, 15 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्य, प्लस 3 पल्य लेना उसमें अपनी स्थिति में, असंयत समय दृष्टि योनिमति तिर्यंचों का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये अंतर की बात है। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे। संजदा संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नानाजीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। ये तीनों प्रकार के तिर्यंचों की ही बात चल रही है। तो ये तीनों ही प्रकार के तिर्यंचों में पांचवा गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? होगा, तो हमेशा ही होगा नाना जीवन की अपेक्षा, हमेशा ही होगा, तो उसको कहते हैं निरंतर है, नाना जीवन की अपेक्षा निरंतर है। तो तीनों प्रकार के संयता संयत तिर्यंचों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि संयता संयतों से रहित तीनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच जीवों का किसी भी काल में अभाव नहीं है। अब एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतोमुत्तम, उन्हीं तीनों प्रकार के तिर्यंच संयता संयत जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर, एक अंतर्मूर्त है, यानी एक अंतर्मूर्त के लिए अन्य गुणस्थान में गया और वापस पांचवे में आ गया, क्योंकि देखा है मार्ग को जिन्होंने ऐसे, वो ए के ऊपर 2 मात्रा हुए, एक कम करना, ऐसे ए और आई, ऐसे तीनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच संयता संयत के से चाहिए ना यार, संयता संयत से तो के चाहिए, ऐसा आपका कहना है? हाँ, तीनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच संयता संयत से अन्य गुणस्थान को जाकर पांचवे में से अन्य में गया, अति स्वल्प काल से पुनः उसी गुणस्थान में आने पर अंतर्मूर्त प्रमाण काल पाया जाता है। अब उत्कृष्ट बात करेंगे। उक्कसेन पूर्व कोड़ी पुधत्तम, उन्हीं तीनों प्रकार के तिर्यंच संयता संयत जीवों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व है। अब मेरा प्रश्न है, ये पूर्व कोटि पृथक्त्व में कितने लेना? अब सामान्य तिर्यंचों की बात करेंगे हम। संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर देखना है हमको, कितना होगा? क्यों छोड़ना पड़ेगा? समूर्षण को क्यों नहीं लेना? तो क्या हुआ, हमने सामान्य तिर्यंच कहा ना, हाँ, तो कितनी कितनी पूर्व कोटि और कितने पल्ले लेना? संयता संयत है तो 3 पल्ले वाले बाद हो गया, तो पूर्व कोटि कितनी लेना? हाँ देखो, हाँ सामान्य में होगा ना, अंतर गिन रहे हम, काल थोड़ा ही गिन रहे उसका। तो कितने पूर्व कोटि लेना बोलो? 95, एक क्यों घटाया? अंतिम उसको भोग भूमि में ले जाना नहीं है, तो सभी पूर्व कोटिया गिनो ना, तो 96 हो जाएगी। ख्याल है? अकेले पर्याप्त में 48 और अकेले योनिमति में 16, बराबर। क्योंकि अभी वो पंचम गुण स्थान है, इसलिए वो तीन पल्ले वाला तो यहाँ घटित नहीं होगा, पूर्व कोटि वाला तो घटित होगा। अब पढ़ेंगे, देखो पढ़ने से पहले थोड़ा हम सोचेंगे ना, तो अपने भले मिस्टेक हो कोई बात नहीं, परंतु जरा अपना विचार करने की जो वो कोशिश हो जाएगी। देखो इसमें से पहले पंचेंद्रिय तिरियंच संहिता संहिताओं का अंतर कहते हैं। जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव संगी पंचेंद्रिय तिरियंच सम्मूर्छिन पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ है ना, सम्मूर्छिन मोह में किया ना, क्योंकि हमको बढ़ाना है ना अंतर, क्योंकि सम्मूर्छिन वाले जल्दी प्राप्त करेंगे। अब योनिमति होगी तो वहाँ तो वो तो फिर गर्भजों में ले जाना पड़ेगा उसके लिए, वो तो सम्मूर्छिन नहीं होगा। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्ता और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ तथा संक्लिष्ट हो, मिथ्यात्व को जाकर और अंतर को प्राप्त हो, अंतर को प्राप्त हुआ ना, पांचों गुणस्थान से फिर गिर गया मिथ्यात्व में, 96 पूर्व कोटि प्रमाण परिभ्रमण कर। अभी 96 क्यों लिया, ख्याल है ना, और वो भोग भूमि वाला लेना नहीं अभी यहाँ, क्योंकि वहां से तो चौथे के ऊपर होता नहीं है। अंतिम पूर्व कोटि में मिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्व के साथ सौधर्मादि कल्पों की आयु को बांधकर सम्यक्त्व तो हो सकता है, परंतु चौथे में रह सकता है, पांचवे में नहीं भेजा अभी, हमको पांचवे का अंतर देखना है। तो या तो मिथ्यात्व में आयु बांधेगा या सम्यक्त्व के साथ आयु बांधेगा। वह जीवन के अंतर्मूर्त अवशेष रह जाने पर संयमा संयम को प्राप्त हुआ और मरण कर देव हुआ, यानी संयमा संयम में मर गया वो, क्योंकि हमको तो अंतर बढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्तों से ही 96 पूर्व कोटिया पंचेंद्रिय तिरियंच संहिता संहितों का उत्कृष्ट अंतर होता है, ये अंतर देखा है। अब पर्याप्तों की बात करेंगे, पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्तकों में भी इसी प्रकार अंतर होता है। विशेषता यह है कि इनके 48 पूर्व कोटि प्रमाण अंतरकाल कहना चाहिए, ये हम एक उसमें जाते थे ना, उसमें भोग भूमि में, इसलिए 48 के बदले 47 लेते थे भव, उसके यहाँ 48 भव लेने हैं और हर एक भव पूर्व कोटि वाला लेना है, क्योंकि हमको उत्कृष्ट अंतर बताना है। इसलिए पंचेंद्रिय तिरियंच योनिमतियों में भी इसी प्रकार अंतर होता है, केवल कुछ विशेषता है उसे कहते हैं। अभी कुछ विशेषता में क्या है, जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव पंचेंद्रिय तिरियंच योनिमतियों में उत्पन्न हुआ, वह 2 मास गर्भ में रहकर निकला। पहले तो हमने सम्मूर्छिन की अपेक्षा ली थी, इसलिए जनरल में भी और पर्याप्तों में भी उनको लिया था, इसलिए वहाँ ये 2 मास की कंडीशन नहीं थी। अब यहाँ ये गर्भज वाले ही लेनी पड़ेगी। 2 मास गर्भ में रहकर निकला, मुहूर्त पृथक्त्व से विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त्व को और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। अभी यहाँ से मिथ्यात्व में जाएगा और अंतर चालू हो जाएगा, पुनः संक्लिष्ट हो, मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो, 16 पूर्व कोटि प्रमाण परिभ्रमण कर, ये उसके 16 वो हो गए संगी असंगी के मिलकर, और देवायु बांधकर जीवन के अंतर्मूर्त प्रमाण अवशेष रहने पर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। संयमा संयम प्राप्त कराना है, पहले बद्धायु कर दिया उसको तो देवायु की बंद होता है, देवायु का बंद होगा तो संयमा संयम ही जा सकता है, ऐसे हमने बात देखी थी ना, तो संयमा संयम को प्राप्त होकर फिर मरेगा। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, पश्चात मरकर देव हुआ। इस प्रकार 2 अंतर्मूर्तों और मुहूर्त पृथक्त्व से अधिक 2 मास से हीन 16 पूर्व कोटिया पंचेंद्रिय तिरियंच योनिमतियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब ये लब्धि पर्याप्तों की बात हम कल देखेंगे। हाँ, किसका? पुरुषवेदी तो पर्याप्तको में अंतर आ गए ना, पुरुषवेदी पर्याप्तको में ले लिया हमने उनको। अकेले पुरुषवेदियों के अलग प्ररूपणा नहीं है, पर्याप्त में सब प्रकार लिए थे हम। जावाणी के ज्ञान तय